SBS हिंदी हमारी कहानियाँ फेसबुक पर।
नमस्कार, SBS हिंदी से मैं हूँ साहिल मकड़ और आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं डॉक्टर निशा कोट से। डॉक्टर निशा हमारे शो पर पहले भी आ चुकी हैं। डॉक्टर निशा ने हमें COVID-19 में गर्भवती महिलाओं को टीका लगाने से जुड़ी काफी जानकारियां दी थी, जिससे हमारे लिसनर्स का काफी फायदा भी हुआ था। डॉक्टर कोट आज हमारे साथ एक दूसरे कारण से है, वह भारतीय मूल की पहली महिला बन गई है का चयन रॉयल कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट के बोर्ड पर हुआ है। बहुत बहुत मुबारक हो डॉक्टर निशा आपको।
थैंक यू साहिल।
डॉक्टर निशा, आप ये बताएं कि इसका मतलब क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे आप भारतीय मूल की पहली महिला हैं।
तो देखें, जो रॉयल ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट या रैंसकॉक कहते हैं इन शॉर्ट उसे, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जितने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में गायनेकोलॉजिस्ट हैं सब इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं। और इसलिए मेंबर्स हैं क्योंकि ये जो कॉलेज है ये हमें पहली बात तो जब हम MBBS करते हैं और उसके बाद ट्रेनिंग करना चाहते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, तो ये कॉलेज है जो ट्रेनिंग कराता है जूनियर डॉक्टर्स की ताकि वो गायनेकोलॉजिस्ट बन सके। जब हम गायनेकोलॉजिस्ट बन जाते हैं तब कैसे पता चले कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, या हर साल जब नई नई चीजें आती है, नया रिसर्च आता है, वो हमें कैसे पता है कि हमें पता है और हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं क्लिनिकली, ये सारी चीजें भी कॉलेज के थ्रू होती हैं। यानी कॉलेज जो कहता है कि हर साल आपने इतने कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने हैं, आपने ये अपनी प्रैक्टिस में सब कुछ करना है ताकि हम कॉन्फिडेंस से कह सकें कि आप अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट हैं और आप प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं।
जी,
ये जो सारे काम है ये कॉलेज के काम है।
जी, इसका मतलब अगर हम इसको सिंपल भाषा में समझें तो ये भारत में जैसे CBSE बोर्ड होता है उसके कुछ कॉलेजेस एफिलिएटेड होते हैं, तो ये जो कॉलेज है ये वन ऑफ द कॉलेजेस है और इसका काम होता है कि आपको असेस करना कि आपने कितनी पढ़ाई की है, लेकिन जो इसका जो रेगुलेटरी बॉडी होती है वो आपरा होती है।
बिल्कुल सही कहा। तो जो रेगुलेटरी बॉडी है जो हर डॉक्टर को अपना मतलब जो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है वो बॉडी आपरा है, पर आपरा खुद तो बताएगी नहीं कि आपने जो ट्रेनिंग की है, जो आपने पढ़ाई की है वो सही है या नहीं है, जितनी आपने पढ़ाई की है वो सही है या नहीं है। ये काम कॉलेज का है कि वो बताता है कि हाँ, जो आपने की है पढ़ाई, जो आपने ट्रेनिंग की है, जो आपने एक्सपीरियंस लिया है वो इनफ है कि आप गायनेकोलॉजिस्ट का काम कर सकते हैं। और यही नहीं कि आप आज कर सकते हैं, पर हर साल जब आप कहते हैं आपरा से कि हाँ मैं अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू करा रही हूँ, तो आपको कॉलेज कहता है कि हाँ आप रिन्यू करा सकती हैं क्योंकि आपने पिछले साल में प्रैक्टिस जो की है वो अच्छे से की है और जो भी नई चीजें जो भी रिसर्च आया है उसमें आपने अपना इंटरेस्ट दिखाया है।
जी, ये एक तो शीर्ष बॉडी हो गई पूरे जितने भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं हमारे न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में। तो डॉक्टर कोट, कितने मेंबर होते हैं इसके, और एक माइग्रेंट का बाहर से आके दूसरी कंट्री से आके इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनना, वन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनना कितना इम्पोर्टेंट होता है माइग्रेंट कम्युनिटी के लिए?
देखिए, अराउंड अगर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में देखा जाए तो करीब करीब 4,000 गायनेकोलॉजिस्ट हैं और ये सारे इस कॉलेज के मेंबर्स हैं, क्योंकि अगर आपको गायनेकोलॉजी का काम करना है तो आपको कॉलेज का मेंबर होना पड़ता है। इनमें से अराउंड 30-40% ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग ऑस्ट्रेलिया में नहीं की या न्यूजीलैंड में नहीं की, उन्होंने ट्रेनिंग दूसरे देशों में की है। और जरूरी नहीं है कि ये सभी डॉक्टर इंडिया या इंडियन सब कॉन्टिनेंट से आते हों, पर इनमें से काफी प्रपोर्शन के डॉक्टर हैं जो इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे ट्रेनिंग करते हैं और फिर यहाँ आके काम करते हैं। और देखें, हम जब यहाँ आते हैं तो हम फॉरेनर हैं इतनी और हमें बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। जब हम यहाँ आते हैं तो हम यूजुअली टेम्पररी वीजा पे आते हैं और जब टेम्पररी वीजा होता है तो वो वीजा हमारे काम से जुड़ा हुआ होता है। जब तक हमें काम मिलता है तब तक हमें वीजा मिलता है, जब हमारे पास काम नहीं होता तब हमें वीजा नहीं मिलता। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम कभी कभी ऐसी जगहों में पहुंच जाएं जहां हमें कोई चॉइस ना हो, हमें काम करना पड़ता है क्योंकि वीजा तो चाहिए, अगर रहना है तो वीजा काम पे डिपेंडेंट है। ऐसी सिचुएशंस में हो सकता है कि हमारा फायदा लिया जाए और ऐसे कई डॉक्टर हैं जो आपको बताएंगे कि उन्होंने ऐसी सर्कमस्टेंसेस फेस भी किए हैं जहां उनका फायदा लिया गया है, पर तब कोई हो जिसके साथ हम बात कर सकें और अपनी बात उन तक पहुंचा सकें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और अल्टीमेटली वो लोग कौन होते हैं? वो लोग वो होते हैं जो कॉलेज में या ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल में जो लीडरशिप की पोजीशन में होते हैं, वो हमारे लिए एडवोकेट कर सकते हैं, वो हमारे लिए बात कर सकते हैं। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हम जैसे लोग जो दूसरे देशों से यहाँ आते हैं, उनके लिए कोई आवाज उठाने वाला हो, कोई बताने वाला हो, और कोई हमारे एक्सपीरियंसेस जो जिनके कानों तक पहुंचने चाहिए वो एक्सपीरियंसेस वहां तक पहुंचाने वाला हो। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे कम्युनिटी और हमारे जैसे जो लोग हैं वो लीडरशिप की पोजीशन में जरूर हो।
जी, तो आपने इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे आने का निर्णय कैसे लिया? कैसे आपकी जर्नी थी? क्या किस चीज ने आपको प्रेरित किया इस कदम की तरफ?
तो देखिए, मैंने इंडिया में ट्रेनिंग की, उसके बाद मैंने 10 साल इंग्लैंड में बिताए और फिर मैं ऑस्ट्रेलिया में आई। जब मैं इंग्लैंड में थी तब भी मुझे ये देखकर बहुत डिसकंफर्ट होता था कि हमारे जैसे लोग, मतलब जो बाहर से आते हैं, जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट से आते हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत हार्डवर्किंग हैं, जहां भी जाते हैं बहुत अच्छा काम करते हैं, पर उनकी आवाज कभी सुनाई नहीं देती। आप कॉन्फ्रेंस में जाएं, जो हमारे जैसे लोग हैं वो हमेशा ऑडियंस में बैठे होते हैं और जो दूसरे लोग हैं वो हमें सिखा रहे होते हैं, पर ऐसा तो नहीं है कि हम जानते नहीं है। हम जानते हैं, हम बहुत हार्ड वर्किंग हैं, पर हमारी आवाज कभी कहीं पहुंचती नहीं है और हम कभी अपने आप को आगे बढ़ाते, एज इन हम ही सोचते हैं कि हम अपना काम करते हैं, हमें क्या लेना देना, ना हमें पॉलिटिक्स से लेना देना है, ना हमें किसी और चीज से लेना देना है। पर इससे ये होता है कि जो अगली जेनरेशन आती है उनके लिए भी बोलने वाला कोई नहीं होता। तो मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लगता है कि जब हम यहाँ सेटल हो जाते हैं, जब यहाँ हम 4, 5, 6, 10 सालों से यहाँ हैं, तो हम सिस्टम को ज्यादा अच्छे से जानते हैं और हम जो अगली जेनरेशन आने वाली है उनके लिए रास्ता जो है वो थोड़ा सा आसान कर सकते हैं। और किस लिए कर सकते हैं? इसीलिए कि ताकि उन्हें इतनी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े जो हमने की है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जैसे लोग आवाज उठाएं, अपने आप को आगे बढ़ाएं और ऐसी लीडरशिप रोल्स में अपना हाथ ऊपर करें।
जी, डॉक्टर निशा, आपको बहुत बहुत बधाई और आप अपने अच्छे कार्य को जारी रखें।
थैंक यू।
SBS हिंदी, हमारी कहानियां फेसबुक पर।